ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तार राज्ञां चो है राजोवाच वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां चो है वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्त्वांशे नावतीर्णस्य विष्णुर्विद्यां सन्तुना। महाराज परीक्षित नौ स्कंध तक भागवत सुन चुके और भगवान कृष्ण के विषय में विशेष सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ये भक्त का स्वभाव है भगवान के विषय में कथाएं सुन करके वो कलित नहीं होता है। बहुत विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने सूर्य वंश का और चंद्र वंश का वर्णन किया और उस वंश में उत्तम राजाओं का अद्भुत चरित्र अद्भुत चरित्र चरितम परमाद्भुतम में एक दो राजाओं का उदाहरण दूंगा। सूर्य वंश में सबसे पहले राजा हुए सूर्यदेव जिनका एक नाम दिवसवान भी है। इसी दिवसवान की चर्चा भगवत भगवत गीता में की है। मन दिवसते योग मैं इस अव्यय योग का उपदेश पहले दिवसवान को किया। दिवसवान ने अपने पुत्र मनु महाराज को दिया और मनु महाराज ने अपने पुत्रों को दिए इच्छा कुछ प्रधान सत्यव्रत नाम है इस समय के जो मनु महाराज हैं जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। इनके विषय में कथा है कि भगवान मुख्यावतार लिए उनके लिए अब सत्यव्रत महाराज के पहले पुत्र नहीं थे। बाद में उन्होंने तपस्या किया तो इससे उनको सौ पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सौ पुत्रों में इक्ष्वाकु महाराज प्रधान है। इक्ष्वाकु भूल सत्यव्रत महाराज को दस पुत्र प्राप्त हुए। अपने इक्ष्वाकु महाराज सौ पुत्र उत्पन्न किए। उन सौ पुत्रों में तीन का नाम बहुत प्रसिद्ध है निमि दंडक और सुषाण। ससाध के कई नाम थे। ससाध नाम पड़ा खरगोश खाने वाला सस खाना खाने वाला सस को जो खाए उसका नाम ससाध है। तो एक बार मनु महाराज ने छोटू महाराज ने आज्ञा दिया कुक्षी उसका नाम तुम जाओ और इतनों के लिए मांस लाओ पवित्र मांस बन में तो जो पूछी गया वन में बहुत परिश्रम किया मृगों को पकड़ने में, साध के लायक पशुओं को कर्पण किया, इस कार्य से उसको बहुत थकावट हो गई, बहुत भूख लग गई, भूख से छटपटाने लगा। अंत में वे खरगोश को सांस को पकड़ करके उसको भूल करके खा गया। जब वो राजधानी में आया तो गुरु महाराज ने वशिष्ठ ने कहा कि ये मांस अशुद्ध है, उच्छिष्ट है, ये पितरों को अर्पित नहीं किया जा सकता। तो शंकु महाराज ने पूछा कि कैसे उच्छिष्ट हुआ, तब ससाद ने बताया कि मुझे बहुत भूख लगी थी, मेरी बुद्धि काम नहीं थी, मैं इसमें से एक सस को खा लिया भूल करके। तब शंकु महाराज ने उसको देश से निकाल दिया। जब इक्ष्वाकु महाराज वन में गए, उनका शरीर पूरा हो गया, तब विपक्षी आया राजधानी में और वही प्रधान राजा हुए। इसके और कई नाम हैं, इंद्रवरा है, इंद्रवरा नाम इसमें पाया। एक बार दैत्यों ने देवताओं को बहुत मारा, को पराजित कर दिया और स्वर्ग का सारा धूप छीन करके दैत्य ले लिया। तब देवराज इंद्र विपक्षी महाराज से प्रार्थना की, आप हमारी सहायता कीजिए, हमें दैत्य को बहुत सता रहे हैं। तब विपक्षी ने कहा, ससाद जिसका नाम ससाद ने कहा, यदि आप हमारा बैल बने, निर्वाही बनेंगे, तब मैं युद्ध करेंगे। इंद्र स्वीकार नहीं की, इन ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, बहुत बड़ा संकट है देवताओं पर, बैल बन जाओ, उन पर सवारी करके विकुच्छी युद्ध करेंगे। तब राजा तैयार हुए और इंद्र देवता बहुत बड़ा शान बनकर के बैल बनकर के उनके सामने हो गए। तब उस बैल के ककुर पर बैठ करके महाराज विपक्षी ने अश्वों के साथ युद्ध किया। उस समय उनकी बाढ़ वर्षा हो रही थी, बाढ़ वर्षा के अग्नि वर्षा, कोई भी अश्व उनके सामने टिक नहीं पाया, सारे दैत परास्त हो गए। बैल के ककुद पर बैठने से ससाद का नाम हुआ ककुस्थ, ककुस्थ। भगवान राम को बारंबार काकुस्थ कहा गया है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि ककुस्थ के वंश में जन्म लिया। और पश्चिम दिशा से विपक्षी राजा ने आक्रमण किया दैत्यों को, बहुत दर्द किया दैत्यों को और उनकी उनके स्वास्थ्य को, उनके धन को, सबको छीन करके राजा इंद्र को दे दिए, देवताओं को दे दिए। इससे उनका नाम हुआ पुरंदर, पुरंदर राज है जो पूर्व पर विजय प्राप्त करें, पूर्व जीत लिया, बड़े बड़े नगरों को उन्होंने जीत लिया। questo è il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, Non si può fare niente. स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ सुंदर उनको अपना पति बन गई, वो अपने आप आ गए। तो इस तरह से मनुष्य मंगा का चरित्र है कि नौम उसका निवृत्ति करें। उर्वशी स्वयं स्वर्ग से आई मनुष्य को अपना आश्रय बन गई, पति बन गई। और इससे इंदी से महाराज मनुष्य के स्वापित्र जति जजाति संजाति आरती व्यक्ति की जति निराज नहीं है। निराज दिया राज उनके पिताजी राज दे रहे थे, जबकि जति ने राज नहीं दिया क्योंकि जति का परिणाम नहीं, इसका परिणाम जानते थे कि जी ये बहुत प्रभाव कुछ होता है। अंत में जी का परिणाम होता है नरक होता है। हमारे यहां कहते हुए जब योग विधान तपस्या करता है, तपस्या से गिर गया तब वो राजा बने, तप से राज राजा राज्य से चुपता है, गलत शासन करता है, नरक में करता है। इसलिए प्रत्येक राजनीति जब जति राजनीति है तब महाराज जजाति रहता है। जजाति का चरित्र अद्भुत है। इन्होंने दो विवाह किए हैं, एक शुक्राचार्य कन्या से और दूसरा विश्वकर्मा व्रत की कन्या से। विश्वकर्मा के पिता का नाम शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य के पिता का नाम था देवराज। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं क्षत्रिय होकर के उन्हें बड़ा हो सकते हैं विवाह किया, तब वो कथा सुनाए। एक बार शर्मिष्ठा अपने सपनों के साथ दयानी के साथ निकली अपने उपवन में, नगर के उपवन में जीने करी। वो कमल लोचना हूं कन्या ने दी गए कि बहुत सुंदर सरोवर उद्यान के भीतर उसे देखकर तुम इच्छा होकर स्नान करी। स्नान कर रही थी अपने वस्त्र को तप प्रसाद करके, तब तक उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैल पर चढ़ करके उस रास्ते से आ रहे हैं। उनको देख करके सभी कन्याओं को बड़ी लज्जा बनाई, सरोवर से निकल करके अपना अपना वस्त्र पहने। दूर से सर्वनिष्ठा में वैराग्य के वस्त्र को पहन लिया, शायद एक ही रंग का होगा इसलिए उसने पहन लिया। इस बात से वैराग्य बहुत रंज हुई और उसने कहा, गाली देते हुए कहा, यह कुतिया जैसे कुतिया जब मंडप में घुस करके घी पी जाए, हवन करने का घी रखा है पी जाए, वैसे ही हमारी साड़ी को पहन लिया। उनको पता नहीं कि हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का देश गुरु वर्ग से ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण। इसके बाद नरेंद्र झगड़ा हुआ आपस में, मंत्रताई नहीं हुआ, इससे निष्ठा भगवान की उसके राजा की पुत्री थी, इसलिए सत्यों ने उसका साथ दिया और देवरानी को हत्या करके कुएं में पटक दिया। संयोग वर्ष उसी रास्ते से जब विजयती महाराज आ रहे हैं, भी बहुत प्यासे थे, निर्याक बनाए थे, शिकार खेले गया है, बहुत प्यास लगी थी, कुआ करते थे जलाशय करती है, पुलिस में देखे इस कुआ में एक बहुत सुंदरी बैठी है, तब उन्होंने अपने दुपट्टा को दे दिया उससे पहनने के लिए, किसी उपाय से उसको बाहर निकाली कुएं से। जब कुएं से बाहर निकली तो कन्या, तब उसने महाराज से प्रार्थना की, महाराज आप हमारा पानी नहीं दिए, हाथ पकड़े हैं, और कोई दूसरा पुरुष हमारा हाथ नहीं पकड़ने, दूसरा नहीं पकड़ने के लिए, तब महाराज निर्दित है तुम कहां की हो, तब इसने बताया कि मैं शुक्राचार्य की कन्या हूं, कुएं में क्यों गिरी थी, तो उसने सारी बातें समाप्त सुना कि हमारी शक्तियों ने उनको पूरा मुख्य दिया। तो देवयानी स्वयं कहा कि भगवान की व्यवस्था नहीं है, मनुष्य की नहीं है, हमको पता नहीं था और आपको पता नहीं था कि ये अविवाहिता कन्या कुएं में गिरी है, और मुझे भी पता नहीं था कि आप इधर आएंगे, निश्चित भगवान का विधान है, आपकी मेरी पत्नी बननी चाहिए। महाराज बजाती जिसकी चाहे ये पत्नी मेरी उन्हें ऐसे नहीं कर सकता, तुम ब्राह्मण हो निश्चित नियम है, मैं विवाह कैसे हो सकता, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा ब्राह्मण, तब तक नहीं भी कहा कि मेरा विवाह ब्रह्मी नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, तो देवाली में कथा सुने मैं कच्छ को साप दी थी, कच्छ बृहस्पति के शिष्य है, वे हमारे पिता से भी संजीवनी विद्या पढ़ने आए थे, उस समय मैं चाहती थी उनसे विवाह करनी, तो मैंने प्रस्ताव रखा कच्छ से, मैंने स्वीकार नहीं किया, ताकि मैं गुरु दूसरे से विवाह नहीं किया, तो मैंने साथ दिया कि तुम जो भी मेरे पिता से पढ़े हो सब भूल गए, तुम्हारे सारा मेडिकल साइंस पढ़ाई हुआ बेकार चलाएंगे। तो कच्छ की संस्कृति अभी तुम्हारा भी ग्रामीण से जुड़ा नहीं है। इस तरह से हम किसी ग्रामीण से बड़े जुड़ा नहीं है। मेरे आप यहां आए, आपने मेरा हाथ पकड़ा, यह भगवान की व्यवस्था है। आप हमारे प्रस्ताव को सीखेंगे और यह समीकरण लिए महिला जो जाती अपनी राजधानी में गए घूमने और देवरानी अपने पिता के यहां पर जुड़ते हुए लेते हुए गई और सारा सारी बात सुना है। देव संष्ठा ने जो कहा है वो सुन करके शुक्राचार्य बहुत दुखी है। संष्ठा ने कहा था कि तुम्हारे पिता हमारे पिता के यहां डॉक्टर शुक्राचार्य की निष्पर्मा राजा के कुत्ते की तरह प्रतीक्षा करते हैं तब भजन देते हैं। ऐसी बात सुन करके शुक्राचार्य बहुत दुखी है और शुक्राचार्य बहुत दुखी होकर के हिंदी स्वीकार है धर्म स्वीकार है हिंदी का इच्छा और हम कहीं मान करके खाएंगे राजा के हिंदू कहीं नहीं करेंगे। इस तरह से गुरु का मान करे देवानी को नमक मिर्च मिला करके कहीं आम कुत्ता है और कौला है राजा है तब सुबह चलने का ठीक करती है। चलो हम निकट नहीं करेंगे हम प्रेरित नहीं करेंगे और ये निकल गए भवन से राजा की इस प्रभाव का पता लगा वो आए शुक्राचार्य को मनाने तीन महिला क्या गलती केवल छोड़कर जा रहे हैं। तो शुक्राचार्य कहा कि वो अपनी पुत्री का त्याग नहीं कर सकते इसके मन में जो है वो पूरा करें। तब वर्धन ने पूछना ने पूछा लेकिन उन्हें क्या इससे तो दयानी ने साफ कर दिया मेरा यहां विवाह है तो हम आपकी देव की सर्विस को दासी बनकर देते हैं और एक बात के लिए सावधान नहीं है कभी भी भूल करके सर्विष्ठा के पेट पर मत जाना। यदि सर्विष्ठा के पेट पर चले गए तो राजा जगह खुश सर्विष्ठा के पेट पर चले गए तो ठीक नहीं है तो राजा भी स्वीकार कर ठीक है दयानी में पत्नी और सर्विष्ठा दासी के राजा की पुत्री दासी बनकर गई और देवानी की सेवा करनी है। एक दिन उसने प्रार्थना किया राजा से प्रजाति से कि महाराज धर्म जो प्रखंड माँ की पत्नी है मुझे संतान चाहिए पुत्र चाहिए मतलब राजा ने धन अपेय करके उसका संग किया और उससे उसको पुत्र हुए। देवयानी से चार पुत्र हैं, फिर वसु, दिलीप और आनंद, और अंत में जटिल है। और उससे पांच पुत्र हैं, शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा है पूरी। इस तरह से महाराज हो जाती है जटिल महाराज सिंह से महाराज परीक्षा करें जटिल महाराज परम धार्मिक है, परम धर्म करते हैं, भक्ति को भगवान ने भागवत में गर्भ सिंह ने कहा धर्मों में भक्ति धर्म और इसलिए भक्ति होती है। असली धर्म है भगवान की भक्ति करना। जब राम धर्म जब सर्मिष्ठा के कुछ हो गए तो गर्भवती हो गए तो राजा प्रजाति देखे उन्होंने कुछ किया लड़कों से तुम्हारी माँ कौन है और लड़कों ने बताया कि हम आपके पुत्र हैं, मेरी माँ शर्मिष्ठा है। इस बात से बंद होकर के तो दयानी घर छोड़ कर भाग गई, चली गई अपने मायके, अपने पिता के यहाँ। पिता ने सुन करके बहुत क्रोधित हुए, शुक्र करके बहुत क्रोधित हुए कि मैं इतनी चेतावनी दिया था फिर भी उसने खुद के पैदा किया है। उसमें लोग की बात की राजा जजाते भी अपनी पत्नी के साथ चले गए ससुराल। भेंट होते हैं शुक्राचार्य ने दंड दिया, कहा कि तुम तुरंत बुढ़ापे से त्रस्त हो जाओ, जरा तम इसका मंगल पूर्व कर लेंगे, मनुष्य पूर्व कर देने वाली जरा तुमको लग जाएगी। तुरंत बयासी महाराज वृद्ध हो गए, 90 वर्ष के भी होंगे और उसने उन्हें प्रार्थना किया अपने ससुर से शुक्राचार्य से कि मैं आपकी पुत्री से तृप्त नहीं हूं। तब शुक्राचार्य ने भी विचार किया मेरा प्रमाद दूढ़ा हो गया, मेरी युक्ति पुत्री रहेगी ये भी ठीक नहीं है। तो महाराज जाति जो विनय करने का आप साथ लौटा दीजिए, आप उसके वचन को लौटा नहीं कृपा करके और उससे जो निकल रहा है बोली भेज रहा है बोले हो गए, लेकिन एक व्यवस्था दे रहे हैं बहुत शक्तिशाली मंत्र के बराबर थे, हमने व्यवस्था दिया कि तुम अपने पुत्रों के पास जाओ, यदि तुम्हारा कोई पुत्र स्वीकार कर ले तुम्हारी बुढ़ापा लेने के लिए तो तुम्हारी बुढ़ापा उनको लग जाएगी और तुम जवान होने लगे। ऐसे शक्ति पहले लोगों ने होती विशेष करके ब्राह्मण तो महाराज गजापति आए, अपने पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ जतिन महाराज, जतिन महाराज से अपनी प्रार्थना की, बेटा मैं भी विष्णु शक्ति की ही विष्णु, और कुछ दिन कुछ वर्ष विषय भोग करना चाहता हूं। तो महाराज जब भी इसको सुन करके अस्वीकार कर दिए, उन्होंने कहा कि विष्णु को भोगे दिन विष्णु से वैराग नहीं होते, मैं चाहता हूं कि संसार से पूरा वैराग हो जाए और मैं भगवान की भक्ति करूं, क्योंकि विषय भोग और भक्ति दोनों साथ नहीं चल सकते। भक्ति के लिए विषय भोग का त्याग करना ही पड़ता है। तो वे अपने पिता की आज्ञा को मुझे स्वीकार नहीं थी और जिंदगी मैं नहीं स्वीकार करूं, मैं बुढ़ापा नहीं मिलूंगा, बुढ़ा शरीर सत्य और से बेकार होता है, मैं भगवान का मंदिर माध्यम नहीं कर पाऊंगा, भगवान को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, मैं भगवान के विषय में कुछ कृपा कथा भी नहीं कर पाऊंगा, तब मैं इस बुढ़ापे को स्वीकार नहीं कर। बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ने साफ जवाब दे दिया। उसके बाद उन बच्चों ने जो ही और अन्य के पास गए, उनके पुत्रों ने प्रस्ताव रखा कि बेटा तुम्हारे नाना ने हमें बूढ़ा बना दिया है, नाना के द्वारा दी गए बुढ़ापा को तुम दे दो, मुझे अपनी जवानी दे दो, पर उन तीनों में जहां तुम नहीं हो विषय भोग करने के स्वीकार नहीं किया। इन तीनों को महाराज सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये बहुत खर है, अमित ही के बुद्ध ये जानते थे कि मनुष्य शरीर और शरीर में जवानी हमेशा रहेगी, ये नहीं जानते थे कि कुछ ही दिन के लिए जवानी रहती, किसी भी मनुष्य को इतना विवेक रखना चाहिए कि जवानी के दिन बीत जाते हैं। बहुत जल्दी बीत जाते हैं, तो तीनों में स्वीकार नहीं करते, उनको तीनों को अधार्मिक कह रहे हैं, दुष्ट कर रहे हैं सुंदर वसाई, तीनों पिता की आज्ञा को नहीं मानी और कुछ निर्णय विषय भोग करने के लिए, और जदू महाराज पिता की आज्ञा नहीं माने विषय भोग से विरक्त होने के लिए, अंत में सबसे छोटे पुत्र पुरुष से उन्होंने कहा, बेटा तुम बड़े भाइयों की तरह मुझे जवाब मत देना, तुम मेरी बुढ़ापा को ले लो और अपनी जवानी दे दो, मैं कुछ वर्ष जवान रह करके विषय भोग करना चाहता हूं। तब गुरु महाराज ने कहा, पिताजी यह मनुष्य शरीर तो पिता का ही दिया हुआ है, इस शरीर के अधिकारी आप ही हैं, अगर आपको यह शरीर चाहिए युवक शरीर तो मैं तुम्हें आपको दे दूंगा, यही मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं निकृष्ट के प्रति, मैं उत्तम कोटि का पुत्र बनी हूं, उत्तम चिन्ह उत्तम हो गया, उत्तम पुत्र वो है जो पिता के संकल्प को पूरा करते हैं, उनके मन में जो इच्छा हो उसको वो पूरा करते हैं, और श्रद्धा से जो पुत्र करता है इच्छा पूरी, लेकिन श्रद्धा से नहीं है, हर मानते कहने पर, कहने पर इच्छा पूरा करें श्रद्धा से, फिर भी वो मध्यम कोटि का पुत्र है, और अश्रद्धा से या इसी भी तरह से अश्रद्धा से जो पिता की आज्ञा न माने पूरा न करे तो वो तो पिता का मूत्र है, ऐसा है मर है, उत्तम चिंतितम को लिया, उत्तम पुत्र हुआ है कि पिता की बात को समझ सकते हैं, मन में समझ सकते पूरा करें, पूरा जान जाए कि पिता जी लोग चाहते हैं तो पूरा करें, ऐसे पितृभाव भीष्म पिता मान ये जान गए मंत्रियों द्वारा कि तुम्हारे पिता विवाह करना चाहते हैं, मिला संतनु महाराज मत्स्य गंधा को एक करके इस पर मोहित हो गए, और उन्होंने कहा उसके पिता से कि मेरा विवाह कर दीजिए, ये राजा थे बहुत बड़े राजा तो उसने स्वीकार कर दिया, परंतु एक शर्त रखा कि आप गंगा जी के पुत्र हैं, आप गंगा जी के पति हैं, आपके पत्नी है और पुत्र भी है, तो आपके राज्य का अधिकारी तो प्रथम बेटा हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं शर्त है कि मेरे पुत्री का बेटा ही राजा होना चाहिए। तो संतनु महाराज को सुना वो कैसे स्वीकार करते, फिर उदास बनते हैं, उनके उदासी को देख करके मंत्रियों ने पूछा कि महाराजा कितना खीन कर रहे थे, तो महाराज ने अपने मन की बात कह दिया कि मेरे मन में मत्स्यगंधा को देख करके उसको पत्नी बनाने की इच्छा हो गई, लेकिन उसके पिता ने यह शर्त कर दिया उसका बेटा राजा होना चाहिए, मेरा पत्नी बेटा जो गंगा जी से जन्म लिया है तो कैसे रहेगा, तो इस बात को देवव्रत ने सुना है, देवव्रत नाम था पहले भीष्म पितामह, उन्होंने सुना इंद्र पिताजी अपने पत्नी चाहते हैं लेकिन हमारे कार्यों नहीं कर रहे, तब देवव्रत ने आकर के पिता के सामने प्रतिज्ञा किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं राज्य नहीं बनना, विवाह नहीं करूंगा, पिता के सुख के लिए उन्होंने राज्य नहीं दिया विवाह नहीं, उसी समय संतनु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा को पूरा किया है, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, तब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक कोई मार नहीं सकता, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब तुम्हारी इच्छा होगी। इतना बड़ा वरदान दिया संतुलन हमारे, इसीलिए इस प्रतिज्ञा के कारण दुर्गंध का नाम हुआ भीष्म। अद्भुत प्रतिज्ञा, राज पूरे पृथ्वी का मिल रहा है, उसके अधिकारी के स्वभाव का बहुत ही लेकिन उन्हें त्याग दिया और अपनी इच्छा से कर दिया, कोई खोज नहीं हुई, कोई समझाया नहीं, अपने आप इस तरह के पुत्र हुए हैं हमारे वैदिक इतिहास में। पिता के सुख के लिए, पिता की बात को रखने के लिए इतने त्याग राज्य नहीं मिले, इसीलिए भीष्म पितामह ब्रह्मचारी रह गए। अब यहां तक कि भगवान परशुराम से भी युद्ध हुए, भगवान से उस युद्ध में हारे हैं। यह अखंड ब्रह्मचर्य का फल था और पिता का आशीर्वाद। एक बार एक लड़की जो काशी की लड़की थी, काशी नरेश, उसको विवाह की इच्छा हुई। वास्तव में भीष्म पितामह स्वयंवर में गए थे और काशी नरेश की तीनों लड़कियों का हरण किया, अम्बालिका, अम्बा और अंबिका। वे चाहते थे कि मत्स्य गंधा से पुत्र हुए थे और राजा बने थे, चित्रांगद और विचित्र बीच, तो उनका विवाह करने के लिए तीनों लड़कियों का हाल को लाने दस हो गए थे। तो राष्ट्र में आते समय अम्बा ने उनसे कहा कि मैं अपना मन सागर को दे चुकी हूं, मैं अपना पति जमीन में मान चुकी हूं, जो लड़की मन में किसी को मान ले कि मेरा पति है तो वास्तव में वो भी पति होता है। तो आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे हंसना के मत ले जाओ। तो महाराज भीष्म पितामह ने उस लड़की को लौटा दिया। फिर जब वो सालों के पास गई और अपने प्रस्ताव रखी, तब सालों ने कहा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम्हारा पानी ग्रहण किया है भीष्म ने, तुम्हारे हाथ को पकड़ा है, नहीं कर सकते। हम बेचारी रो रहे, अंत में बहुत से मुनियों के पास उसने कहा कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, सामने राजा भी नहीं किए, पितामह भी सुन गए टुकड़ा भी नहीं। तब उन्होंने कहा कि उनके गुरु से कहो, उन्हें तुम भीष्म पितामह के गुरु से कहो, वे गुरु जी समझा देंगे। तो भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर रहते थे, वहां अम्बा ने जाकर निवेदन किया कि आप अपने शिष्य को आज्ञा दीजिए, वे हमारे सभी तो भगवान परशुराम भक्त ऐसा है ये विचारी की करोड़ विभाग से पिघल गए और हस्तान गए आकर के उन्होंने ऋषि पितामह को आज्ञा दिया तुम अम्बा को रथ पर बैठाए तुम्हें तो उन्होंने कहा तो मैं बैठाया था अपने भाई के विवाह के लिए मैं तो यज्ञा कर चुका हूं पिताजी से मैं आजीवन कर्मचारी रहूंगा तो विवाह नहीं करना है और राज नहीं होंगे तब भगवान कृष्णा ने कहा कि मेरी आज्ञा है मैं तुम्हारा गुरु हूं तो अम्बा को स्वीकार करूं लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं ऐसे नहीं कर सकता अगर गुरु जी पता में आज्ञा दे तो उसको नहीं पालन करना चाहिए तो भगवान कृष्णा ने कहा तब तुम मुझसे युद्ध करो तो क्षत्रिय थे स्वीकार करके ठीक युद्ध करूंगा लेकिन मैं आपकी बात को नहीं मानता मैं विवाह नहीं करूंगा तुमने विवाह नहीं किया इतने प्रसन्न क्षत्रिय कि साक्षात भगवान के अवतार परशुराम की युद्ध की बहुत बड़ा युद्ध हुआ अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग अंत में नारद जी ने आकर के रोक दिया केवल बेकार हो गए कोई हार नहीं रहा युद्ध रोक दिए इतना बड़ा पिता की आज्ञा का पल होता पिता का आशीर्वाद और ब्रह्मचर्य का बल इसमें भीष्म पितामह बहुत बड़ा विजेता है और महाभारत युद्ध में वही अम्बा शिखंडी बन करके आई उन जन्म में अम्बा थी इस जगह शिखंडी बन करके आई भीष्म पितामह का नियम था कि कोई भी स्त्री पहन शरीर में वो मेरे सामने आ गए मैं युद्ध नहीं करूंगा ये सिखा लिया है तो भीष्म पितामह धनुष चलाना छोड़ दिए तब अर्जुन युद्ध करने लगे और अंत में भीष्म पितामह की इच्छा हो गई कि मेरा शरीर जाना चाहिए भगवान को दर्शन करते हुए पिता की आज्ञा का बड़ा बल होता है पूरी महाराज ने कहा पिताजी मुझे खेद है कि मैं आपकी इच्छा को जान करके उसे पूरा नहीं किया आपके कहने पर दे रहा हूं जवान जब प्रसादक बिंद होते परम पिता प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता से परम पद प्राप्त होता है भगवान का ध्यान मिलता है इसलिए जाति महाराज ने बल दिया अपने पुत्र को पूरी तुम्हारे वंश के लोग राजा होंगे अब तुम राजा बनोगे समस्त जब उदार त्यागे जगाते महाराज तो पूर्व महाराज को राज दिए उसी पूर्व के पंच में युधिष्ठिर हुए अर्जुन उसी पंच में भरत महाराज भरत दुष्यंत के पुत्र शकुंतला के पुत्र भरत इसीलिए अर्जुन को भगवान करेगा भारत संबोधन करते जदु महाराज को धर्म सील कर रहे हैं परीक्षित, क्योंकि वास्तविक धर्म का वही पालन किया। सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति करना। धर्म हुआ भक्ति की उत्पत्ति, जिससे भगवान की भक्ति है वही धर्म है। वेदों में भी उपदेश है, बहुत धर्म है, बहुत धर्म अष्टम धर्म, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चारी बड़ा सभी अभी कृष्ण नहीं भर दे स्वकर्म करके सदावर करेंगे। चारों वर्ग के वो चारों आश्रम में रहने वाले अपने अपने वर्ग धर्म और आश्रम धर्म का पालन करें, लेकिन कृष्ण का भजन न करें, तो स्वकर्म करते हुए भी गौरव नरक में गिरते हैं। चारी बड़ा सभी यदि कृष्ण नहीं भर है स्वकर्म करते सदावर पड़ेंगे। कोई गृहस्थ धर्म का पालन करे या वानप्रस्थ का बहुत तपस्या करे वानप्रस्थ जीवन में, लेकिन भगवान की भक्ति न करे, भगवान की पूजा न करे, भगवान का नाम जप न करे, कीर्तन न करे, भगवान कृष्ण से प्रेम न हो तो वो नरक नहीं जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है भक्ति करना। अगर अपने धर्म का त्याग भी कर दिया है लेकिन किसी भी तरह से भगवान की भक्ति कर रहा है तो ठीक है, तत्वा स्वधर्म चरणा मुझे भजन, अपने स्वधर्म का त्याग करके भी यदि किसी भक्ति कर रहा है तो वही धार्मिक है। पिता की बात न मानने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जदु महाराज धर्मशील नहीं है, तो भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने पिता की बात को नहीं माना। इसकी भक्ति करनी है तो विस्तार से कुछ नहीं, तीर्थ जगर वंशी भगवान भूत भाव भगवान ज्ञान दिशा तानी नौ यदवंश में अवतार लिए भगवान ने अपने अंश के साथ श्री बलराम के साथ, और बहुत निराय किया उनको हमको सुनाएंगे। उनसे न अपने से विश्व विज्ञान सुनिए, अपने अंग से अपने द्वितीय देह श्री भगवान के साथ भगवान ने जो भी किया है उनको सुनाइए, प्रशंसा पर प्रयोजन सहित उनकी इस लीला का क्या प्रयोजन है। और अपने कहा कि भगवान जन्म लिए मथुरा में पर ब्रज में आ गए, तो क्यों आ गए आसमान में कई लोग भगवान पिता के रथ को जन्म, पिता के घर से ब्रज में क्यों रहे। पिता का घर बड़ा स्नेहमय होता है, स्नेहवान पिता के घर को छोड़ ब्रज में क्या है। फिर ब्रज में अपने नंद आदि बंधुओं के साथ कहां कहां गए, क्या किए ब्रज में, और Μακδάλα δεν είναι κάποια. Επειδή Δαρκά, Δαρκά δεν είναι μόνο η Παπνία. Απλή κάτι μπορεί η Παπνία. Και τι είναι η Παπνία. Φυσκέσα μιλά και συγκούρασε μιλά. Να μαγειωτήσει μια και σε που πατήρουν μετά τα πιθανία μου. Σε μόνο το αρκάρι λόγω σημαίνει. Με διαβαώτε τσάρι. Σημαίνει βαώτε τ' καλικά. Γιατί τσάρι μου διώσε μέρα. Τι είναι η τσάρι. Ευχαριστούμε τον Παγκόσμιο Πίσω και τη Σαμόστα του Λαού, λαό που συμμετέχει. Θα μου πει τώρα, διστάζει. Σε μόνο ένα πράγμα είναι πολύ σύντομο. Και η Σαμόστα του Λαού είναι σχέση. Από τον Σμαή. Η σουνάμι είσαι πέντες πέντες σαν ούτε γύλα κοίνει εις μέσα. Κρίσκα ανώνυμη μια εκείνη. Σαν μαρουάν, σε σνάμι, με αγιάρ πανούσε, αγιάρ μου ξεκλώνει αυτή. Αν ήταν σε σνάμι παρουμένει. Τι κοίνει έχουμε σε κασέ, λέγοντας πέρα. Δεν το πω τσάρτη γυνάει. Φιλή μας είναι τσάρτη. Γιατί θα τα πράσω και μας λέει ποτέ. Το χαντζάρου πώς είναι. Να βάλουν και τη λαούγκο. Για να είκασε. Είναι άλλα που έτσι κασί παρέμει. Αν κοπήγα για σημαίνει. Είναι αλληλεγγύη σοβαρά, μα είναι φαινική. Μα το αν και δικάσου μέσα, τότε δεν είναι ότι. Ως να είναι, ως να είναι κάτι. Μα το αν και μιλά κατά την μαχημά και ο Θεός, πρέπει να δώσουμε μπορεί αν δεν πιστεύουμε. Αν στην προγράμμα του Παρτζάνου δεν είναι. Μπορεί ο Παρτζάνου και ο Σάρα. Κάτι τώρα, κάτι τώρα βγαίνει ο Πάρτζάνου. Δεν του καβγαίνει ο Πάρτζάνου. Λέγεται επειδή η Μαρή παραπέρα δεν Μπαλάνι και Τζάμι δεν αγγίζει. Σταύρο μήνυμα. Αψαλήμα αυτό το σε Μπαλάνι και Τζάμι δεν την παντάει. Δεν σε λαπρόκο.